आगे के श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस भाव से किस तरीके से हमें दान देना चाहिए ये क्या बताया गया है। 23-24 श्लोकों को हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविहितः पुरा। तो अब यहां बता रहे हैं कि जो तीन प्रकार की तपस्या हैं और यज्ञ है और दान है गुणों के आधार पे, तो उसमें सत्वगुणी ज्ञान को सत्वगुणी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और जो रजोगुणी या तमोगुणी है उनको त्याग देना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ तपस्या और दान जब भी किया जाए उसको भगवान के नाम के साथ उच्चारण के साथ किया जाना चाहिए। क्या श्लोक, यह श्लोक क्या रहा है? ओम तत् सत इति निर्देश। निर्देश यह है कि जब भी यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, ये ओम तत् सत बोला जाए। तो ये इस बात को उसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा शास्त्र में निर्देश है। क्या शब्द यहां पे आ रहा है? निर्देशो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और बात बोल रहे हैं कि इस नियम का पालन करने से व्यक्ति इन क्रियाओं के आध्यात्मिक उद्देश्य को समझ पाता है। किसी भी यज्ञ से, दान से और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होने चाहिए, इसलिए ओम तत्सत जो कि भगवान विष्णु का नाम है वह बोला जाता है, जिसके द्वारा उसको बोलते हुए यज्ञ दान और तपस्या को करना चाहिए। ये बात यहां पे भगवान बता रहे हैं। यहां पे बोल रहे हैं ब्राह्मण निर्देश का अर्थ है कि ओम तत्सत शब्द जो तीन शब्द हैं उसके द्वारा व्यक्ति भगवान विष्णु के नामों को स्मरण करता है। श्रुति कहती है ओम इति एतद् ब्रह्मणो निदेष्टतम नामः। ओम ये ब्रह्म का नाम है, ये बाघ संदर्भ में आया है, ठीक है। ओम पहला नाम है, तत् दूसरा नाम है और श्रुति का तत्त्वम असि के अनुसार ये सतारा है और साथ साथ छंद वो ब्रह्म आप हो। मैं फिर से समझाता हूं, समझ में नहीं आया होगा। ओम भगवान का नाम है, तत् भगवान का नाम है और सत जो है वह भी ब्रह्म को ही इंगित करता है। ये सब छंदों को उपनिषद से वो कोट करते हैं, मुश्किल हो रहा समझने में। ओम तत्सत जो है यह भगवान को इंगित करता है, भगवान विष्णु को इंगित करता है। इसमें बहुत सारे कोटेशन दिए गए हैं, जैसे कि सत के लिए ने बोला है सदैव सौम्य, मतलब वो सौम्य ब्रह्म भगवान विष्णु बड़े सौम्य है, तो भगवान विष्णु को इंगित करता है। ये छंदोग उपनिषद को बताया गया है। सौम्य मतलब होता है मृदु, सॉफ्ट हृदय वाले, सॉफ्ट हृदय वाले। किसी को दुख नहीं देना। तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये केवल जरूरी नहीं है कि केवल यही तीन नाम बोले जाने चाहिए। यहां टीका में बोल रहे हैं कि भगवान के और अनंत नाम है, अन्य प्रकार के नाम है, तो आप हरे कृष्णा बोल के भी दान दे सकते हैं और विष्णु विष्णु बोल सकते हैं, ओम तत्सत बोल सकते हैं, सब भगवान विष्णु नारायण बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। तत् यहां पे बता रहे हैं तत्त्वम असि, आप वह ब्रह्म है, भगवान वह ब्रह्म है। यहां पे छंदोग उपनिषद के कोटेशन बता रहे हैं तत्त्वम असि, आप वह ब्रह्म है। इस प्रकार से तो कह रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, वेद हैं और यज्ञ, ये ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत साल पहले प्रकट किए गए थे। विहिता शब्द कहां पे आ रहा है? विहिता शब्द लास्ट में आ रहा है, टेक्स्ट नंबर 23 में। थोड़ा टफ होगा श्लोक, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और ओम तत्सत के द्वारा भगवान विष्णु को इंगित किया जाता है, इसलिए ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। हाँ बहुत अच्छी बात है, क्यों बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर आप ओम तत्सत लेते हो या भगवान का नाम उच्चारण करते हो तो यज्ञ में कुछ गलती होगी, दान में कुछ गलती होगी, तपस्या में कुछ गलती होगी तो पूर्ति हो जाती है। ये बात बोलने के लिए सब बातें बोली जा रही, सिंपल सिंपल शब्द बोलना चाहिए कि कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसमें भगवान विष्णु का नाम ले लेते हैं तो कुछ भी गलती होती है तो पूर्ण हो जाती है। जैसे शुक्राचार्य जी यस, तो बलि महाराज को जब भगवान ने पकड़ लिया तो यज्ञ बाधित हो गया, तो भगवान कहते हैं कि भाई इनका यज्ञ तो डिस्टर्ब हो गया था, तो बताइए कुछ गलती हो गई तो आप पूरे कर दीजिए। तो उन्हें कहा कि जहां पे आपका नाम उच्चारण होता है वहां सारे यज्ञ की गलतियां पूर्ण हो जाती है, तो आप यहाँ स्वयं उपस्थित हैं तो गलती होने की क्या बात है। हाँ शुक्राचार्य स्वयं बोलते हैं, वैसे विरोध कर रहे थे लेकिन हमें समझ में आना चाहिए वो लीला का अनुसार हो रहा है। हाँ भगवान को समर्पित कर देना, तो इस तरह जो भी दोष है वो कर्म का नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ दान तपस्या के समय भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। जब यज्ञ दान तपस्या करते समय भगवान का नाम उच्चारण होने से सारी गलती पूरी हो जाती है, तो नाम उच्चारण क्या महाराज बोलते हैं, खाटी नाम उच्चारण करें। सीधे नाम उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है, फिर कितना लाभ होगा। अब मान लीजिए आरती कर रहा है पुजारी, कुछ उससे गलती भी हो जाए लेकिन भक्त लोग जो हरे कृष्ण गा रहे हैं उससे सारी गलती मतलब जो है समाप्त हो जाती। कुछ भी गलती हो, कलयुग में किससे गलती नहीं होती। तो इसलिए अच्छा है अगर हम कुछ सेवा करते से हम भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं करें, इस प्रकार से तो बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करता है तो निश्चित रूप से उसको उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन फल क्या प्राप्त होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति। ध्यान देना चाहिए कि फल स्वर्ग प्राप्ति का जो था बात वो पहले काट दी गई थी। ठीक है ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद की 24 वाला की टीका मैं आगे बताऊंगा, पढ़िए। हाँ,
सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी।
अब तो समझ में आ गया ना, ये बात एकदम स्पष्ट हो गया। ओम तत्सत कह करके भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, इसलिए आपके लिए बस सिंपल। बहुत बार आप भक्तों को यज्ञ करते हुए देखेंगे तो कहते हैं इदम कृष्णाय इदम नमः, यह कृष्ण के लिए है, कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। इदम कृष्णाय इदम नमः, ये नमः नहीं होना चाहिए, नमः, ये कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। बहुत सिंपल, ये भावना रहनी चाहिए। यस, वैसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जब खिचड़ी बना रहे हैं ना तो जो आप बोले चावल डाले ना, जब आप कुकिंग करते हो ना तब बोल सकते इदम कृष्णाय इदम ना मम स्वाहा। ठाकुर जी के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो ही भावना होनी चाहिए कि भाई यज्ञ कर रहा हूँ, स्वाहा। मान लो हलवा में सूजी भुनने डालना है, घी डाला, स्वाहा। परम पूज्य राधागोविंद महाराज जी एक बार क्लास में बता रहे थे, कह रहे थे महाभारत से कोट कर रहे थे कि कलयुग में कोई शूद्र कुकिंग भी कर रहा है भगवान के लिए तो वो भी यज्ञ हो जाता है। पता नहीं कुछ तो कोट कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ ना कुछ हो जाता है। इदम कृष्णाय इदम न मम, ये तो मजाक की बात है, आप तो भगवान के भक्त हैं लेकिन कहने के अर्थ ये भावना में रखना चाहिए कि मतलब यज्ञ करना से है वो कुकिंग भी एक यज्ञ है कि नहीं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। ऐसे मजाक में भी आप कर सकते हैं, गला घी डाली स्वाहा कृष्णाय कृष्ण। यस बड़ी
यह बताया जाए,
एक अच्छी बात हमने अभी उनके मुंह से बात निकल रही थी, बहुत अच्छी लगी कि स्थान देख लेना चाहिए। महाराज हम जब बोलते हैं स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। वृंदावन में कोई भजन करने को मिल रहा है, सेवा करने को मिल रहा है, इससे बढ़िया स्थान नहीं हो सकता।
उदाहरण गुरु महाराज देते हैं, जब ब्रह्मा जी गए क्षीर सागर पे तो अपन यहाँ से भी प्रार्थना कर सकते थे पर वो क्षीर सागर में गए।
क्षीर सागर में जाकर के सब भक्तों इकट्ठा करके भगवान को प्रार्थना किए। तो अब देखिए, अब आप जरा इसी को अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकल। मंगल आरती में भगवान जी के सामने जाना, समय कितना बढ़िया है, देश कितना बढ़िया है, पात्र तो भगवान है ही, उनको तो हम समय दे रहे हैं अपना, स्थान कितना बढ़िया है, वृंदावन धाम है, अब देख रहे कितना भाग्य है। तो इस गीता के श्लोक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बुद्धिमान होकर के व्यक्ति को सोचना चाहिए कौन से देश में कौन से काल में क्या करना चाहिए। अब जैसे मंगल आरती है, मंगल आरती में जप करने का समय नहीं है, और हम जप करते हैं, जब जप करने का समय तो सोने का समय नहीं है, बहुत सिंपल बात है। और आप देखिए, कल सुबह 9 बजे आप प्रसाद वितरण करेंगे, तो जो साधु भक्त हैं सब अपना साधना करके आए, जो भूखे भी है, कथा सुन चुके हैं, वो पात्र भी है, स्थान भी बहुत बढ़िया है, समय भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा चम्मच चला दीजिए, कितनी कृपा मिल जाएगी। 5 मिनट, 10-15 मिनट मैक्सिमम, 10-15 मिनट, वो समय 15-20 मिनट बहुत कम है, आपको लगेगा लाभ कितना अधिक हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि ये श्लोक है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। इस जितने भी श्लोक हमने सीखे अभी, देश काल पात्र देख करके भगवान को दान देना चाहिए, सारे भक्तों को दान देना चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए भगवान स्वयं बोलेंगे। कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि जो खाने का दान है ये सर्वश्रेष्ठ दान बोला जाता है, अन्नदान, क्योंकि भूख से भक्त कष्ट पा रहे हैं, उनको प्रसाद खिला दिया, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोग संतुष्टि का अनुभव नहीं करते जब भूखे होते हैं? श्रीनाथ प्रभु क्या लगता है? है ना, उस टाइम कुछ भी याद नहीं आता कि हमारे पास हम और कुछ हमारे पास है कि नहीं, भूख लग रही है बस प्रसाद पर संतुष्ट हो जाते कि नहीं? ठीक, कितना कृपा मिलेगी भगवान की हम समझ नहीं पाएंगे, हमें शास्त्र के विचार लेकर चलना चाहिए। ठीक है, पढ़िए।
यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3-3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है।
यस, पढ़ी 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 पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग।
किंतु जब ये ब्रह्म, ओम, तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है, ओम तत्सत, ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है।
भगवान भी गीता में बोलते हैं ना, प्रणवः सर्व वेदेषु। पढ़िए।
जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए जाते हैं। ओम इत्येतद् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, ऋग्वेद। प्रथम लक्ष्य का सूचक है, फिर तत् त्वमसि।
ये सीधे बलदेव विद्यापीठ टीका से है, एकदम एज इट इज प्रभुपाद दिली। हाँ,
छांदो उपनिषद 6-8-7। दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा
सदैव सौम्य, एकदम हम चर्चा किए थे। नहीं, सब जो है ओम तत्सत किसको सूचित करता है? भगवान विष्णु। यस,
तृतीय लक्ष्य का सूचक है, ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीव ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था।
एकदम क्लियर। यस,
अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए।
बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देख रहे हैं, भगवान ने, मैं थोड़ा विचार ही कर रहा था कि गुणों से उठाकर सीधे निर्गुण अवस्था में लगा दिया। आप मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, सिंपल, कितना सिंपल बात है। तो तुरंत हम लोग निर्गुण अवस्था में आ जाते हैं। वैष्णव, हाँ, कृष्ण अर्थम अखिल चेष्टा, सारी चेष्टाएं, सारे प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। ये गुण रहे तो आप कोई भी कार्य कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, निर्गुण अवस्था। पढ़िए।
जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है।
छोटी सी बात, कोई व्यक्ति एकादशी इसलिए भी कर सकता है कि थोड़ा थोड़ा फैट बर्न होगा, थोड़ा वजन कम होगा।
क्या कर सकता
है? एकादशी का व्रत करे ताकि मेरा वजन कम हो जाए। इसलिए उद्देश्य का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इंटेंशन क्या है, एटीट्यूड क्या, मनोवृत्ति क्या है। तो यह हम सीख रहे हैं मनोवृत्ति, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ओम तत्सत, किस लिए, भगवान प्रसन्न हो। हमने पढ़ा था, हम याद है कि अनुयायी में भी पढ़ा था हमने, और इसमें भी गीता में भी पढ़ा था कि आमरण अनशन के लिए जाते हैं तपस्या करने के लिए, कि पॉलिटिकल कारण से, ऐसी तपस्या करने से फायदा नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यस,
कृष्ण भावना मृत देव कार्यों का वैज्ञानिक कार्यवयम है जिसमें मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके।
ये लास्ट टाइम बहुत नहीं, लास्ट नहीं है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कार्यवयम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक इसलिए है, हमको सीखना है। अब आप ये बताइए, जो हम अभी हमने चर्चा करी यज्ञ के संबंध में, दान के संबंध में, तपस्या के संबंध में, क्या आपको ये थ्योरी क्लियर नहीं हो रही है कि भाई ये कौन सी तपस्या किस तरीके से कर रही है, जारी चाहिए, ये समझ में आ रहा है? और ये भी समझ में आ रहा है कि हम दिव्य तपस्या कैसे कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो अब ये थ्योरी बहुत क्लियर है, अब इस थ्योरी के अनुसार अगर हम यज्ञ दान तपस्या करते हैं तो फिर हमको वो रिजल्ट मिलेगा ही, भगवत प्रेम, भगवत अनुभूति, भगवत साक्षात्कार, भगवान के प्रति आकर्षण मिलेगा ही, अगर वैसे ही करते हैं जैसे भगवान बता रहे हैं। यहां पे वैज्ञानिक अर्थ, वैज्ञानिक तरीका अर्थ यह है कि अगर आप उस क्रिया को, उस तरीके को एकदम सही से पालन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये चाहे हरे कृष्ण मंत्र का जप हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह हमें उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, और ये हृदय में चेक कर रहा चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या फिर जो भी है, तब रजोगुणी इच्छा या तमोगुणी इच्छा जो भी करने की। ठीक है,
ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता।
इसमें वो बोल रहे हैं लास्ट लाइन ये थी, हम 23-24 पढ़ा था ना यहाँ पे, 23-24 नहीं पढ़ा, ठीक है पढ़ लें या रुक जाए, कितने श्लोक बचे अभी, ठीक है पढ़ लेते हैं। तस्मात् ओमित्युदाहरित्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम् ब्रह्मवादिनाम्। वहां ये बोल रहे हैं कि इस कारण से जो ब्रह्मवादी लोग हैं वह ओम तत्सत इति उदाहरता, इसलिए ताकि जो भी यज्ञदान तपस्या है उससे अक्षय लाभ प्राप्त हो, निर्गुण अवस्था प्राप्त हो, इसलिए ओम तत्सत उदाहरित बोल करके यज्ञदान तपस्या की क्रिया करते हैं। बस स्पष्ट है इसका उत्तर, भगवान का नाम लेकर के प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम् ब्रह्मवादिना, अर्थात जो जिस विधान का यानी शास्त्रीय विधान के अनुसार ब्रह्मवादियों ने, अध्यात्मवादियों ने इस प्रकार की विधि का शुभारंभ किया है। पढ़िए,
अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं।
इसे भागवत क्लास से पहले बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एकदम स्पष्ट है, कुछ समझाना ही नहीं है। यस,
तात्पर्य ओम तद विष्णु परम पदम ऋग्वेद, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्यक्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है।
ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, आगे करेंगे चर्चा कर। बहुत लाइन, एक लाइन कितनी सुंदर है ना, अगर भगवान के लिए क्रिया किए जाए तो सिद्धि प्राप्त होगी ही, निश्चित प्राप्त होगी ना। बस आप देखिए, थोड़ी सी मनोवृत्ति चेंज कर दे व्यक्ति की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, बस इतना चेंज कर दे तो सिद्धि प्राप्त होगी ही, और जितनी भी गलतियां भगवान उसको कवर कर लेंगे। कितना अच्छी बात हम सीखने को मिल रही
है,
बस बस परेशान नहीं कर रहा, ये इतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, रखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय।